കുഞ്ച ബിഹാരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ
ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ
രാമ
श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते, कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेन वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीतांबर दारुण बिंब फल धरोष्टा, पुरणेन्दु सुंदर मुखान अरविंद नेत्राय, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुति दिव्यस्तवै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, यस्यान्तं न विदोसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का स्वागत है इस प्रीति भोज कार्यक्रम में। संडे नहीं, सैटरडे संध्या समय प्रीति भोज। तो जैसे कि हम लोग हफ्ते में एक दिन सब भक्त लोग इकट्ठा होते हैं कृष्ण कथा को सुनने के लिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बना के रखा है ये संडे प्रोग्राम है, प्रीति भोज का कार्यक्रम जो है, कि एटलीस्ट सब भक्त लोग मिलकर हफ्ते में एक दिन एकत्रित हो गए हैं, भगवान का कीर्तन और कथा को श्रवण करें। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत पवित्र मंथ महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है?
कार्तिक
मास। इतना पवित्र महीना है कि शायद 12 महीना हिंदी में याद ना हो, लेकिन कार्तिक महीना याद रहता है ना। बाकी सब तो ऐसे ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ही है, लेकिन कार्तिक को सब भक्त लोग इतना महत्व, बहुत बहुत विशेष महीना है एक्चुअली कार्तिक महीना। आप जानते हैं कि साल में 13 महीने होते हैं, है ना, नहीं 12 होते हैं। तो साल में 12 महीने जो होते हैं ना, उसमें से महत्वपूर्ण दो महीना माना गया है शास्त्रों में। दो महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है। कौन सा है दो महीना वो? एक तो सावन महीना और दूसरा कार्तिक महीना। ये बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। और इस दो महीने में भी परम पवित्र अगर महीना माना गया तो कार्तिक महीने को माना गया है। ये शास्त्रों में वर्णन है, पुराणों में। बहुत ही पवित्र महीना है। क्यों ये बहुत पवित्र महीना है, क्यों इसकी महिमा इतना ज्यादा है इस महीने की? क्योंकि भगवान कृष्ण की अनंत लीलाएं इस महीने में हुई हैं। भगवान कृष्ण का अनंत अनंत लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं इसी महीने में हुआ है कृष्ण का। तो आवाज जा रहा है सबको? हाँ। तो भगवान कृष्ण की अनंत अनंत लीलाएं इसी महीने में सबसे ज्यादा हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अभी आप लोगों ने दीप दान किया भगवान दामोदर को, यशोदा दामोदर को, कितना सुंदर कृष्ण बधे हुए हैं, उनको दीप दान अर्पण किए। तो इस ये लीला इस महीने में हुई। और साथ साथ में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया इसी महीने में। गोचारण लीला, गोवर्धन इत्यादि अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान इसी महीने, इसी कार्तिक महीने में उन्होंने संपन्न की। तो बहुत अनंत लीलाएं इस महीने में बहुत ज्यादा हुई है कृष्ण की। और साथ साथ में इस मास की महिमा, कार्तिक महिमा, इस महीने की महिमा आचार्य गण बताते हैं कि वह इसलिए भी है क्योंकि यह जो महीना है ना, श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय महीना है। राधा रानी को बहुत प्रिय है ये कार्तिक महीना, इसलिए कृष्ण इस महीने को बहुत प्रेम करते हैं। बहुत पुण्य, बहुत पवित्र माना गया इस महीना को। क्यों? क्योंकि ये श्रीमती कृष्ण क्यों इस महीने को प्रेम करते हैं? क्योंकि राधा रानी को प्रिय है। हम साधारणतः देखते हैं क्योंकि राधा कृष्ण किसको ज्यादा प्रेम करते हैं? श्रीमती राधा रानी को प्रेम करते हैं। हम साधारणतः देखते हैं कि भौतिक संसार में अगर एक प्रेमी प्रेमिका है तो कैसा है, प्रेमिका को जो चीज पसंद है वो प्रेमी को भी ऑटोमेटिक पसंद हो जाता है ना। कभी कोई नहीं भी पसंद रहता तो पसंद करना पड़ता है कि नहीं। तो इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी को एक कार्तिक महीना प्रिय होने के कारण कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय है। और साथ साथ में अनंत अनंत लीलाएं तो इस महीने में हुआ है। तो इसलिए इस महीने में जो भक्त लोग होते हैं, भक्त लोग अपने साधन भजन को बढ़ा देते हो। जो रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हो उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जैसे कि जप कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, या 4 माला का जप कर रहे तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मतलब जो भी भक्ति के क्रियाकलाप, आध्यात्मिक कार्यकलाप जो भी है वो इस महीने में बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि इस महीने में भजन साधन जो भी करते हैं उसका फल जो है ना कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है, हजारों गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए समय की महिमा है, समय की बहुत महिमा होती है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना समय खराब चल रहा है, समय अच्छा चल रहा है ना, मेरा समय खराब चल रहा है। तो ये कार्तिक है, इस समय की बहुत महिमा है। शास्त्रों में वर्णन है कि समय के, जैसे कि आप सही समय पे अगर सही बीज डालेंगे तो सही फसल उपज होगा, है कि नहीं। इसलिए इस कार्तिक मंथ में अगर हम इस विधि विधानों का पालन करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, वैसे तो व्रत इत्यादि का तो बहुत सारे बताए गए हैं कार्तिक में, लेकिन साधारणतः सुबह जल्दी उठना, जप करना, मंगल आरती करना और भक्तों की संग करना, यशोदा दामोदर को, भगवान दामोदर को दीप दान करना सुबह शाम, और जप इत्यादि को बढ़ा देना। तो इस प्रकार से हम जो भी इस प्रकार से एक्टिविटी करते हैं निश्चित रूप से उसका फल जो है ना वो कई गुना हमको प्राप्त होता है। इसलिए इस समय का बहुत महत्व है, इसलिए कार्तिक महीना बहुत पवित्र माना गया है। वैसे पुराणों में इस कार्तिक महिमा, कार्तिक इस मंथ की, इस महीने की बहुत सारे गुणों का वर्णन, महिमा का वर्णन किया गया है। एक एक कथा को मैं कहता हूँ, पद्म पुराण से एक कथा आती है कि पद्म पुराण में वर्णन है कि एक एक गुणवती नाम की एक कन्या थी। गुणवती उसका नाम से ही पता चलता है कि वो बहुत गुणवान थी। उसके अंदर बहुत सारे गुण थे, बहुत 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 सुंदर कन्या थी। सुंदरता केवल देखने की दृष्टिकोण में ही नहीं बल्कि वह अंदर से भी सुंदर थी। इस संसार में बाहर से कोई सुंदर है तो जरूरी नहीं है कि अंदर से भी सुंदर हो, है ना। कभी कभी बहुत बाहर से बहुत सुंदर दिखने लगे, पता चला जब नजदीक जाते तो अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं वो लोग, है ना। तो ये जो गुणवती थी, जिनके पिताश्री दोनों ब्राह्मण फैमिली के थे, उनके पिताश्री देव शर्मा जिनका नाम था, देव शर्मा के पुत्री, दोनों एक ही पुत्र, एक ही पुत्री थी देव शर्मा को, और कोई पुत्र इत्यादि नहीं थे, केवल एक पुत्री थी और बहुत ही गुणवती थी, बहुत ही सभ्य थी। तो हुआ क्या कि इसके अंदर अनेक अच्छे गुण होने के नाते उनके पिता, जैसे कि हर एक पिता चाहते कि हमारी पुत्री का जो विवाह है किसी अच्छे खानदान में हो, अच्छे जगह पे हो जहाँ पे वो खुश रहे। तो ऐसे ही देव शर्मा जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत इस अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उन्होंने बहुत सारे वर को उन्होंने देखा, ढूंढा, लेकिन गुणवती लायक कोई वर उनको प्राप्त ही नहीं हो रहा था। इतने अच्छे उनके गुण थे, उन्होंने बचपन से ही देखा था उसके गुणों को, इसलिए वो जिस प्रकार का ढूंढ रहे थे उसके लिए उस प्रकार का कोई भी वर उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो देव शर्मा के एक शिष्य थे जिनका नाम चंद्र था, तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी कोई अंततः इसका विवाह तो कराना ही है, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य जो चंद्र था उससे उनका विवाह संपन्न कर दिया। गुणवती का विवाह संपन्न हो चुका चंद्र के साथ, बहुत अच्छे से रहने लगे। एक दिन की घटना है कि देव शर्मा और उनके जो शिष्य चंद्र, जो कि अभी पहले गुरु और शिष्य थे, अभी क्या बन गए, ससुर और दामाद। तो दोनों, एक दिन की घटना है कि वो दोनों जंगल में गए लकड़ी इत्यादि इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जब गुरु शिष्य थे तभी वो इस प्रकार के क्या करते थे, अभी भले से ससुर और दामाद बन गए लेकिन फिर भी वो साथ में ही हो जाते थे जंगल वगैरह में। तो लकड़ी वगैरह के इकट्ठा करने गए, लेकिन अकस्मात दैवश क्या हो गया कि कुछ जानवरों के अटैक के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। देव शर्मा और चंद्र दोनों की जंगल में मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। अभी देखिए, वो तो वहां वो भी दोनों भक्त थे भगवान के, ब्राह्मण थे, उनका जो गुणवती जैसी पुत्री जिसका है, मतलब वो व्यक्ति क्योंकि पिता के गुणों को ही तो लेके आई थी ना, इसलिए वो भी कितना गुणवान रहे होंगे। जनरली एक माता पिता कैसे होते हैं, उनका बच्चा भी उसी प्रकार से होता है ना। तो उनके वो उनके अंदर तो अच्छे गुण था ही, जिसके कारण उनकी गति तो उच्च गति होगा दोनों का, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी यहाँ पे गुणवती जो थी अकेले पड़ गई, और तो कोई था नहीं फैमिली में, कोई भी नहीं था, अकेली पड़ गई, बहुत दुखी होने लगी गुणवती, क्या करे अभी ऐसी परिस्थिति में, अकेली पड़ गई, पिता की मृत्यु हो गया, पति का भी मृत्यु हो गया, इसलिए बहुत दुखी हो गई। और उसने क्या किया, अभी क्या करूंगी मैं अपने जीवन को, और क्या कर सकती हूँ मैं अकेले, क्या कर सकती हूँ, इस प्रकार का विचार करने लगी। तो उसने क्या किया कि उसके पास जितने भी धन संपत्ति था, ब्राह्मण फैमिली से थे तो बहुत ज्यादा धन संपत्ति तो था नहीं, लेकिन जितना भी धन संपत्ति था उसने क्या किया, सब कुछ दान में दे दिया। बोला अभी इस धन संपत्ति का रह के क्या फायदा, जब पिता ही नहीं रहे, जब पति ही नहीं रहा। तो उसने सारे धन संपत्ति को बांट दिया और बांट कर अपने लिए एक कुटिया का निर्माण किया, और कुटिया का निर्माण करके उसने संकल्प लिया कि मैं जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत मैं अभी भगवान का भजन करूंगी। इस प्रकार उसने संकल्प लिया, और साथ साथ में संकल्प यह लिया कि मैं विशेष करके कार्तिक महीना और एकादशी व्रत का पालन करूंगी। एकादशी महीने में दो बार आता है, बहुत पवित्र तिथि है एकादशी, ये भी कृष्ण को बहुत प्रिय है एकादशी। तो इस प्रकार से जो गुणवती थी उसने संकल्प किया, संकल्प किया कि वो क्या करेगी, कार्तिक महीने का इस व्रत का पालन करेगी और एकादशी का उपवास रखेगी और भजन करेगी, इसलिए उसने कुटिया बनाया और उसमें वो भजन करने लगी। पुराणों में वर्णन, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ये गुणवती नाम की जो कन्या थी, भजन करते करते जब अंतिम समय आया उसका, काफी बूढ़ी हो गई, और अंतिम समय आया तो एक दिन की घटना है कि वह गंगा, डेली गंगा के स्नान के लिए जाते थे, लेकिन अभी शरीर वृद्ध हो चुका था, काफी वृद्ध हो चुका था शरीर, इसलिए एक दिन की बात है कि जब वो गंगा में स्नान करने के लिए गई, तो स्नान का ठंड का महीना था
और जैसे ही उसने गंगा में डुबकी लगाया उसको ठंडी इतना तेजी से ठंडी लग गया कि वो तुरंत ही वो कांपने लगी और कांपते कांपते उस गंगा के किनारे स्नान करते ही गंगा के किनारे उसने अपने शरीर को त्याग दिया कृष्ण के नामों को लेते हुए इस व्रत को धारण करते हुए कार्तिक व्रत का धारण की हुई थी कार्तिक महीना चल रहा था। तो इस प्रकार जैसे ही उसने शरीर को त्यागा तुरंत ही भगवान के धाम से भगवान के जो दूत है वो लेने आ गए विमान से उनको तुरंत ही दूत लेकर विमान से उनको लेकर कहाँ चले गए भगवत धाम लेके चले गए आध्यात्मिक लोक में लेके चले गए उस गुणवती कन्या को। और कहते हैं कि वर्णन है पुराण में कि ये जो गुणवती कन्या थी ये इस कार्तिक महीने का व्रत का पालन करने से उसको कैसा उस भगवान का नित्य धाम नित्य समय के लिए प्राप्त हो चुका नित्य धाम प्राप्त हुआ और नित्य समय के लिए और वो गुणवती कन्या अगले जन्म में भगवान कृष्ण की पटरानी सत्यभामा के रूप में आती है। वो गुणवती कन्या सोचिए उसने क्या किया था कार्तिक महीने के व्रत का पालन किया था एकादशी व्रत का पालन किया था इसलिए दो तिथियां जो है ना ये कार्तिक महीना और विशेष करके एकादशी जो तिथि है ना बहुत महत्वपूर्ण है बहुत कृष्ण प्रसन्न होते हैं। देखिए गुणवती ये इनका पालन करके वह नित्य संगनी बन गई कृष्ण का है ना सत्यभामा नित्य संगनी। एक दिन की घटना है कि सत्यभामा ने पूछ दिया भगवान कृष्ण से प्रभु आपके आपका भजन साधन तो अनेक ऋषि महात्मा इत्यादि सब लोग करते हैं आपका आपको प्राप्त कर पाना बहुत ही दुर्लभ है बहुत ही दुर्लभ है आपको प्राप्त कर पाना ऋषि महात्मा बहुत योग तपस्या करते ही रहते हैं लेकिन मैंने क्या ऐसा पुण्य कार्य किया था क्या ऐसा कार्य किया था कि जिससे कि मैं आपकी पत्नी आपकी पटरानी बनी इस प्रकार का प्रश्न करती है सत्यभामा। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में गुणवती के नाम की एक कन्या थी तूने कार्तिक महीने का व्रत का पालन किया एकादशी का व्रत का पालन किया और कार्तिक महीने में तुम्हारा व्रत को पालन करते करते शरीर चला गया और उसके बाद तुम मुझे प्राप्त हुई इस प्रकार से तुमको मैं अपनी नित्य पटनानी का स्थान दिया। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण इस महीने से बहुत ही परम पवित्र महीना है बहुत प्रसन्न होते हैं इसलिए इस महीने को बहुत सुंदर तरीके से हमको जो भी भजन साधन इस महीने में बढ़ा देना चाहिए विशेष करके इंद्र तृप्ति के जो भी क्रियाकलाप है उसको इस महीने के लिए त्याग देना चाहिए कुछ न कुछ चीजों को त्याग करना चाहिए इस महीने भर जो भी ऐसा लगता है कि जो हमको बहुत प्रिय है इस महीने में उसका इस महीने के लिए त्याग करना चाहिए कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए साथ साथ में भजन इत्यादि साधन को बढ़ा देना चाहिए जब इत्यादि को। तो इस प्रकार से एक बहुत सुंदर कार्तिक महीना चल रहा है इस कार्तिक महीने में प्रभु जी ने बोला कि कल रात नहीं अभी कल तिथि गया ना राधा कुंड का प्राकट्य दिवस बहुलाष्टमी तो इस महीने में हम क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि भगवान कृष्ण का इस महीने में अनंत अनंत लीलाएं हुई है तो आइए हम उन कुछ लीलाओं को श्रवण करते हैं भगवान कृष्ण के जैसे कि अभी कल ही राधा कुंड का प्राकट्य दिवस गया बहुलाष्टमी गया परसों था तिथि लेकिन वो था रात को 12 बजे रात को 12 बजे राधा कुंड का प्राकट्य हुआ तो हम थोड़ा उसके बारे में श्रवण करते हैं। तो श्लोक आया है क्या सबको क्या सबके मोबाइल में नहीं ना ठीक है कोई बात नहीं। तो राधा कुंड मैं विचार कर रहा था कि राधा राधाष्टमी गया तो राधाष्टमी के बारे में अभी बैठे बैठे नीचे ही विचार कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज मैं पहली बार इस प्रकार का दमन में क्लास ले रहा हूँ कथा को कर रहा हूँ तो मैंने सोचा था कि सब भक्त लोग मिलकर आज का जो ये प्रोग्राम और आज का ये जो कथा है हम इस कथा को भगवान को समर्पण इस कार्तिक महीने में भगवान को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि अभी देखिए आप लोग हमेशा कोयल की वाणी सुनते आते हैं है ना कथाओं को बहुत सुंदर देवारी प्रभु कथा करते हैं बहुत सुंदर गाते हैं लेकिन उनका गला इसमें प्रॉब्लम है इसलिए मेरे को यहाँ पे गधे को बैठना पड़ा यहाँ पे है ना इसलिए ये सारे प्रोग्राम को हम भगवान को अर्पण करते हुए आज प्रार्थना करेंगे कि भगवान देवरी प्रभु को बहुत अच्छे से ठीक कर दे ताकि नेक्स्ट बार से आपको जो कोयल सा ध्वनि है वो आपको सुनाते रहे हैं, काफी दिनों से वो कर नहीं रहे कथा कीर्तन वगैरह, थोड़ा गला में कुछ इन्फेक्शन है, तो भगवान कृपा हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान जल्दी करेंगे ना, है ना। तो ये सारा प्रोग्राम आज का जो फिस्ट प्रोग्राम है हम ये भगवान को अर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। तो बहुलाष्टमी राधाष्टमी कौन कौन वृंदावन धाम में गए हुए हैं, कौन कौन, मतलब बहुत कम संख्या है, 8-10 लोग ही है ना। धाम यात्रा करना चाहिए सबको। तो वृंदावन धाम में राधा कुंड का किस प्रकार से प्राकट्य हुआ और भगवान कृष्ण किस प्रकार से उस तट पे कैसे कैसे लीलाएं कुछ किए, उसका संक्षिप्त में हम कुछ वर्णन हम सुनेंगे। तो राधा कुंड के विषय में जानते हैं, राधा कुंड सुने हैं कभी, राधा कुंड करके कोई एक स्थान है सुने हैं ना, राधा रानी को बहुत प्रिय है उस कुंड, और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, है ना, सुने हैं ना राधा कुंड। ऐसे भजनों में वृंदावन के बहुत सारे भजन में राधा कुंड का नाम आता है ना, सुने ही रहेंगे सब लोग। तो उस राधा कुंड के बारे में जिनका प्राकट्य हुआ कल, तो उनके प्राकट्य के विषय में कहते हैं एक वह स्थान है रूप गोस्वामी पाद, हमारे 60 गोस्वामी में से 6 गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है रूप गोस्वामी पाद, जिन्होंने वर्णन करते हैं इस राधा कुंड के स्थान के विषय में। वो अब उनका एक ग्रंथ है उपदेशामृत करके एक ग्रंथ है जिसमें वो वर्णन करते हैं इस राधा कुंड के बारे में, क्योंकि उस ग्रंथ में टोटल 11 श्लोक है, उसमें 9वें श्लोक में वह वर्णन करते हैं राधा कुंड के बारे में। जब भी वह भजन स्थलियों का सर्वश्रेष्ठ भजन स्थली कौन सा है उसके बारे में वर्णन करते हैं, तो इस भजन स्थलियों का क्रम वाइज जब वर्णन करते हैं तो वह 9वें श्लोक में वर्णन करते हैं वो रूप गोस्वामी पाद, और उसमें राधा कुंड की महिमा को बताते हैं कि राधा कुंड कौन सा सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो इसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में पहले सुनते हैं कि क्या है राधा कुंड, कौन सा जगह है वो राधा कुंड जो कि भगवान को इतना प्रिय है। तो श्लोक में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्, वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धना, राधा कुंड मिहापि गोकुल पते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्या दष्ट दस्य विराजतो गिरतटे सेवाम विवेकी नह कहा। उसमें कहते हैं श्लोक में रूप गोस्वामी पाद कि बैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, बैकुंठ मतलब वह स्थान जहां पे किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं है, कुंठ मतलब दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार के कोई दुख वहां पे नहीं है, इसलिए उस जगह का नाम है बैकुंठ, वहां पे कोई दुख नहीं है। तो सबसे पहले ये भौतिक जो सृष्टि है ना, देखिए भौतिक जगत जो है ना, ये भौतिक ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि का ना 1/4 भाग है, बहुत छोटा सा है, ये संपूर्ण सृष्टि का 1/4 भाग है भौतिक ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि बैकुंठ, मैं इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि मैं राधा कुंड के स्थान की महिमा को बताने जा रहा हूं, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने किस प्रकार से उसकी महिमा को बताया है हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो कहते हैं कि बैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, बैकुंठ जगत जो है जो कि भौतिक जगत से श्रेष्ठ माना गया है ना, श्रेष्ठ ही है, आध्यात्मिक जगत है वो। तो कहते हैं कि बैकुंठ जनितो वरा, वरा अर्थात सर्वश्रेष्ठ, इस बैकुंठ जगत से भी एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है, कहते हैं कौन सा स्थान, तो कहते हैं मधुपुरी। बैकुंठा जनितो वरा वह सर्वश्रेष्ठ स्थान है, वो कौन सा स्थान है बैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ, मधुपुरी अर्थात मथुरा, और वो कौन सा मथुरा की बात कर रहे हैं, जो इस भौतिक जगत में ब्रजधाम में जो मथुरा स्थित है, जहां पे हम लोग जाते हैं ब्रजधाम की यात्रा करने के लिए, वह श्रेष्ठ है। कहां से श्रेष्ठ है, उस आध्यात्मिक जगत में जो बैकुंठ है, उस बैकुंठ से भी श्रेष्ठ इस भौतिक, इस भौम वृंदावन में जो मथुरा है वो सर्वश्रेष्ठ है। रूप गोस्वामी पाद इस बात को बोलते हैं, मतलब कम अगर वृंदावन धाम में जाते हैं तो कहां पे जाते हैं, साक्षात हम गोलोक धाम में जाते हैं, इसलिए वहां पे एक्चुअली हम अपने उद्यम से, अपने प्रयास से हम वहां पर कभी भी जा नहीं पाएंगे वृंदावन धाम में। कहते हैं वृंदावन धाम में केवल एक ही शक्ति से जा सकते हैं, वह है श्रीमती राधा रानी की कृपा। जब तक श्रीमती राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, तब तक हम वृंदावन धाम में कभी भी प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कभी कभी कोई भक्त लोग बहुत प्रयास करते हैं कि वृंदावन जाएंगे, लेकिन किसी न किसी कारण उनका कैंसिल हो जाता है। कभी कभी तो टिकट निकल चुका रहता है, कल जाना लेकिन आज कैंसिल हो गया। तो जब तक, क्योंकि वो जो जगत है, वो जगह है जो है ना, वो साधारण जगह नहीं है, वो आध्यात्मिक लोक है। इस श्लोक से हम देख सकते हैं, रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि वो जगह कौन सा है, बैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी। बैकुंठ जगत जो आध्यात्मिक जगत में स्थित है, उस आध्यात्मिक जगत में बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वरा मधुपुरी। इस भौम वृंदावन में, ब्रज धाम में जो मथुरा है वह सर्वश्रेष्ठ है। और आगे कहते हैं वो कि तत्रापि रासोत्सवाद, वृंदारण्य तत्रापि रासोत्सवाद। कहते हैं कि इस मथुरा से भी श्रेष्ठ कौन सा जगह है, वृंदारण्य मुदारी पाणी रमरात तत्रापि। कहते हैं कि इस मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन है, जो कि उसी ब्रज में वृंदावन है ना। मथुरा जाते हैं, मथुरा स्टेशन है, वहां उतरते हैं, फिर वहां से वृंदावन जाते हैं हम, है ना। तो इस मथुरा से भी श्रेष्ठ कौन सा स्थान है, वृंदावन है। तो वृंदावन क्यों श्रेष्ठ है, तो कहते हैं कि वृंदारण्य उदार पाणि रमणा तत्रापि। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने वहां पे उदार की बहुत मधुर मधुर लीलाएं वहां पे किया है भगवान कृष्ण ने, गोपियों के साथ रासलीला। वृंदावन जो कि 12 वनों से पूरित है वो वृंदावन, वहां पे मधुर मधुर लीलाएं भगवान कृष्ण ने किया है। इसलिए इन मधुर लीलाओं के नाते जो यह मथुरा से भी श्रेष्ठ कौन सा स्थान है, वृंदावन। लेकिन आगे कहते हैं कि इस वृंदावन से भी एक और सर्वश्रेष्ठ स्थान है, वो कौन सा है? कहते हैं कि तत्रापि गोवर्धन। शुरुआत में क्या, वैकुंठ जगत से श्रेष्ठ कौन सा स्थान, मथुरा, और मथुरा से भी श्रेष्ठ कौन सा स्थान, वृंदावन, क्योंकि वहां भगवान कृष्ण ने मधुर मधुर लीलाएं की। और उस वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन है, जहां पे कहते हैं कि उदार पाणि रमणा, जब जहां पे भगवान कृष्ण ने अपने कर कमलों से चला, और विशेष करके अपने कर कमलों से उस गोवर्धन को धारण किया, और भगवान कृष्ण की अनन्य गोचारण लीलाएं जो है उस गोवर्धन धाम में हुआ है। इसलिए हम जब ब्रज धाम में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमको गोवर्धन परिक्रमा करना चाहिए, बहुत फेमस है गोवर्धन परिक्रमा, सब भक्त लोग करते हैं, ऐसा कोई समय गोवर्धन परिक्रमा मार्ग कभी खाली ही नहीं रहता है, और विशेष करके इस महीने में तो ऐसी भीड़ लगी रहती है वहां पे, कभी भी खाली नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान है। रूप गोस्वामी बात करते हैं कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ इस भौम जगत का जो मथुरा है वो श्रेष्ठ है, और उससे भी सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन धाम, और उससे भी सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन। और विचार करने वाली बात यह है कि इस गोवर्धन से भी सर्वश्रेष्ठ एक स्थान है, तो कहते हैं कि राधा कुंड मिहापि गोकुल पते प्रेमा मृता प्लावनाथ। कहते हैं राधा कुंड, ये जो गोवर्धन के तलहटी में स्थित राधा कुंड है, यह जो है इस गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है। एक राधा कुंड की महिमा है, सोचिए, मतलब पूरे ब्रह्मांड में इससे सर्वश्रेष्ठ स्थान है ही नहीं कोई, एक्चुअली देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, पूरे जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान कोई है तो वह है राधा कुंड, जिसका प्राकट्य दिवस कल था, राधा कुंड का। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जो राधा कुंड यहां पे गोकुल पते प्रेमा मृता प्लावनाथ, ये क्या है वहां पे, तो कहते हैं कि ये जो गोकुल पते है भगवान कृष्ण जो है ना, ये कृष्ण और राधा का प्रेम का स्वरूप ये राधा कुंड है। अगर हम कृष्ण और राधा के प्रेम को हम तो जान नहीं सकते कभी, समझ नहीं सकते उसको कभी, लेकिन अगर उस प्रेम को आप अगर समझना और देखना चाहते हैं ना, तो उस राधा कुंड के किनारे जाइए और उस राधा कुंड के जल को देखिए, उसके दर्शन को देखिए। कहा गया है कि वो उसके प्रेम का एक तरल रूप है राधा कृष्ण के प्रेम का तरल रूप ये राधा कुंड का जल है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ऐसा कुर्यादस्य विराजतो गिरतदे सेवा विवेकी न का, कहते कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कि इस कुंड का, इस जल का पान नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसकी इतनी महिमा है। तो इस प्रकार से इस राधा कुंड की बहुत महिमा। चलिए अब आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, हम गौड़ीय धारा के भक्त लोग हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से उस राधा कुंड के स्थान पे गए, राधा कुंड का दर्शन किया, सर्वप्रथम वृंदावन धाम की चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से यात्रा की, चलिए हम इसको एक देखते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम की यात्रा की। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम की यात्रा का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में इस बात को, इस लीला को रखा, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम की यात्रा की। और इस चैतन्य महाप्रभु के हम फॉलोअर हैं, इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से उस धाम की यात्रा की और कैसे कैसे गए, हमको उनके चरणाश्रित होकर हमको वृंदावन धाम में जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन धाम में गए तो वो सबसे पहले विश्राम घाट प्रवेश करते हैं, विश्राम घाट पे वहां पे रुके, थोड़ा विश्राम किए, इसलिए इस जगह का नाम विश्राम घाट पड़ गया है ना, वहां पे रुके। और आज भी परिक्रमा जो ब्रज 84 कोस की जब परिक्रमा शुरू होती है ना, उसी विश्राम घाट से स्टार्ट होती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वहां से ब्रज धाम की यात्रा शुरू की थी। जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा भी हम करते हैं, तो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने जहां से परिक्रमा शुरू किया है वहीं से हम करते हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो दान घाटी से परिक्रमा शुरू करने का विधान है, लेकिन हम गौड़ीय धारा में होने के नाते, चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों में, उनके पद चिन्हों में चलने के नाते, हमारा जो परिक्रमा स्टार्ट होता है वो कुसुम सरोवर से स्टार्ट होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कुसुम सरोवर से परिक्रमा स्टार्ट की। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम विश्राम घाट पहुंचे, लेकिन उनके हृदय के अंदर एक ही दर्शन के अभिलाषी था, वो कौन सा स्थान, राधा कुंड। एकदम दर्शनाभिलास उनके मन के अंदर था कि कभी मैं राधा कुंड का दर्शन प्राप्त करूंगा, ये उनके अंदर, मन के अंदर उनके ये अभिलाष बहुत तेजी से था। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उस विश्राम घाट से मधुबन होते हुए, तालवन होते हुए, बहुलावन होते हुए, और वो कहां पहुंचे, अरिट नाम के ग्राम में पहुंचे, अरिट गांव, उस गांव का नाम था, अभी जहां पर राधा कुंड है पहले उस गांव का नाम था अरिट गांव, ग्राम अरिट ग्राम भी क्यों पड़ा उसका नाम, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक असुर का दहन किया उस जगह पे, उस असुर का नाम है अरिष्टासुर, अरिष्टासुर को मारने के नाते भगवान कृष्ण उस जगह पे मारे, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया अरिट ग्राम। चेतन महापुरुष जब अरिट ग्राम में पहुंचे तो वहां के गांव वासियों को उन्होंने पूछने लगे कि राधा कुंड और श्याम कुंड कहां पे प्राप्त होंगे, हमको कहां पे मिलेंगे, कहां पे देखने मिलेंगे, कब दर्शन होंगे उनके। तो उन्होंने बहुत पता करने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राधा कुंड और श्याम कुंड कहां पे है, क्योंकि वह लुप्त हो चुके थे, राधा कुंड और श्याम कुंड। चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन जैसे ही वो अरिट ग्राम में पहुंचे, पूछताछ तो किए, लेकिन उनको पता चल गया कि निश्चित रूप से ये जो तीर्थ है, ये राधा कुंड और श्याम कुंड निश्चित रूप से लुप्त हो चुका है, इसलिए यहां के लोगों को पता नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को आभास हो चुका कि राधा कुंड और श्याम कुंड यहीं पे है, क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जैसे ही इस अरिट ग्राम में पहुंचे, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार, स्वाभाविक कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ना, उमर पड़ा, इसलिए उनको आभास होने लगा कि राधा कुंड और श्याम कुंड यहीं पे है। तो वहां पे ढूंढते ढूंढते उन्होंने किसी खेत में गए, वहां पे एक धान की खेती थी, और उस खेत के पास वहां पे उन्होंने दो क्यारियों को देखा, एक वहां पे फेमस था है, गोरी क्यारी और काली क्यारी फेमस था, छोटे छोटे उसमें थोड़े थोड़े जल थे, थोड़े थोड़े। चैतन्य महाप्रभु जैसे इन दोनों क्यारियों को देखा, वो तुरंत समझ गए कि और कुछ नहीं है, क्या है, राधा कुंड और श्याम कुंड है। चैतन्य महाप्रभु तुरंत ही उस राधा कुंड के जल का पान किया, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही जल को उन्होंने टच किया, पान किया, तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु के अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। और चेतन महाप्रभु ने छोटे छोटे क्यारी था, कीचड़ था, थोड़ा ही पानी था उसमें, और उन्होंने तुरंत ही वहां पे लोट पोट कर उसमें नहाने लगे। गांव के लोगों के दृश्य ये देखकर वो आश्चर्य हो गए कि ये क्या हो गया, सन्यासी पागल हो गया लगता है, लेकिन उनको क्या पता कि उनको कृष्ण के जो प्रेम है वो प्राप्त हो रहा है वहां पे। इस प्रकार से सारे लोग सोचने लगे कि क्या हो गया इस सन्यासी को। लेकिन चेतन महाप्रभु ने वहां पे सबसे पहले उन्होंने राधा कुंड में उन्होंने स्नान किया, और उसके बाद श्याम कुंड में स्नान किया, उसके बाद फिर से श्याम कुंड में स्नान किया, फिर से राधा कुंड में किया स्नान चेतन महाप्रभु ने। उस राधा कुंड में स्नान करने के तुरंत बाद चेतन महाप्रभु ने कुछ स्तुतियों का पाठ करने लगे, पाठ करते, और इन स्तुतियों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में रखते हैं।
यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याम कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेषु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा।
कहते हैं कि चेतन महापुरुष स्तों का पाठ करते हुए कि कहते हैं कि यथा राधा तथा विष्णु, जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, तो कहते हैं कि उसी प्रकार तस्याम कुंडम प्रियम तथा, कहते हैं उसी प्रकार से ये जो राधा कुंड है, राधा कुंड है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को प्रिय है जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी उसको उनको अत्यंत प्रिय है। यथा राधा तथा विष्णु तस्याम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सैवैका, जिस प्रकार से सारी अनंत जो गोपियां है भगवान कृष्ण की, उसमें से सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन सी है? श्रीमती राधा रानी, जो कि कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। उसी प्रकार इस राधा रानी का ये जो कुंड है, राधा कुंड, भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से चैतन्य महापुरुष इन स्थितियों को करने लगे। यथा राधा तथा विष्णु, विष्णु देखिए पद्म पुराण का श्लोक है। पद्म पुराण में इसका राधा की महिमा को जब वर्णन किया गया है, तो वहां पे इस श्लोक को रखा गया, जिसको कि उठाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी रखते हैं चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसको पाठ किया था, स्तुति किया था इसको कहकर राधा कुंड के तट पे। तो यथा राधा तथा विष्णु, देखिये इसमें विष्णु शब्द आता है, जबकि राधा रानी विष्णु के साथ नहीं रहती है, वो कृष्ण के साथ रहती है। लेकिन प्रभुपाद जी भावार्थ देते हुए अनुवाद में लिखते हैं कि विष्णु नहीं है, कृष्ण है। कभी कभी हम भक्तों के मन में भी कंफ्यूजन आता है। हम सुबह सुबह आरती करते हैं ना तुलसी महारानी का, तो क्या बोलते हैं? वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति प्रय देवी सत्यवते नमो नमः। कोई भक्त कहते हैं कृष्ण भक्ति प्रय देवी सत्यवते नमः नमः। प्रश्न उठता है कि कृष्ण है या विष्णु है। ये बात ये प्रश्न लेकर जब प्रभुपाद जी के पास गए भक्त लोग कि हमको कृष्ण बोलना चाहिए कि विष्णु बोलना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन है। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये पुराण का श्लोक है, ये पुराणों का श्लोक है, इसलिए पुराने को हम लिखित बातों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो दोनों सही है। कृष्ण भी बोल सकते हैं, विष्णु भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी एक अच्छा स्टेटमेंट दिया वहां पे, बोलते जब हम विष्णु, जब भी विष्णु का नाम आता है, तो हम भक्तों को चाहिए कि विष्णु का नाम सुनते ही चतुर्भुज रूप का हमको ध्यान स्मरण नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बोलते जब विष्णु का नाम आता है तो हमको द्विभुज कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विष्णु नहीं, कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जी जहां पे भी विष्णु शब्द आया वहां पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, कृष्ण शब्द को ही प्रभुपाद जी यूज किए हैं। तो इसलिए जब भी विष्णु का स्मरण होता है मतलब वो कृष्ण है, इसलिए हमको कृष्ण। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इन स्तुतियों को करते हुए चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा और कहते हैं कि ए कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे जले जले केली करे तारी रास रंगे। चैतन्य महाप्रभु, तो इस कुंड में अगर राधा कुंड में कोई अगर चैतन्य महाप्रभु भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण के लीलाओं का, किस प्रकार से इस कुंड के तट पे कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ अत्यंत सुमधुर लीलाएं यहाँ पे की। कहते हैं कि ए कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे, भगवान कृष्ण नित्य रूप से राधा रानी के साथ इस कुंड के तट पे वह लीला इत्यादि करते हैं, और जले जले केली करे तीरे रास रंगे, इसमें क्रीड़ा करते हुए वह रास नृत्य को करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से वहां पे तुरंत स्नान किया, और स्नान करके इस कुंड की महिमा को स्तों के द्वारा उन्होंने पाठ करके चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां की, और बहुत गोविंद लीला में से भी चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे स्तुति की। तो बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों स्तुतियों को करने के पश्चात उनकी महिमा को बताने के बताते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भी इस राधा कुंड के जल को सेवन करेगा, उसके तट पे वास करेगा, उसके दर्शन करेगा, तो निश्चित रूप से कृष्ण जो है ना, जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से हमको भी प्रेम करेंगे। एक बार भी कोई इस राधा कुंड के जल को पान कर लिया तो निश्चित रूप से कृष्ण जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से हमको भी प्रेम करेंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत ही फिर इस प्रकार के वहां पे स्तों का पाठ करके और उस कुंड की महिमा को बताते हुए चैतन्य महाप्रभु उनके जो सेवक बलभद्र भट्टाचार्य थे उनको आदेश देते हैं कि इस कुंड की मिट्टी, क्योंकि चैतन्य महापुरुष ने तुरंत ही उस कुंड से लेकर वहां पर तिलक लगाया और बलभद्र भट्टाचार्य को बोलते हैं कि इस कुंड की मिट्टी को लो और मैं इससे डेली रोज तिलक करूंगा। तो उस कुंड से मिट्टी को लिया और चैतन्य महापुरुष फिर उस राधा कुंड के तट से आगे चलकर गोवर्धन की तरफ निकल पड़े। तो इस प्रकार से राधा कुंड की जो है बहुत अपार महिमा है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है राधा कुंड। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने महिमा को बता दिया। उस सारे लोग ब्रजवासी उस देख भी लिए वहां पे किस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड जो कि एक छोटी छोटी क्यारी के रूप में, लेकिन इसकी महिमा कितना है। चैतन्य महाप्रभु ने उन स्तुतियों से स्तों का पाठ करके चैतन्य महाप्रभु ने उनकी महिमा को बता डाला और चैतन्य महाप्रभु फिर आगे निकल पड़े गोवर्धन की तरफ। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल जाने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर आकर रहकर भजन करने लगे। छह गोस्वामी में से हमारे एक गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर आकर भजन करने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही विरक्त महात्मा थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और जो देखिए उनके विषय में जब हम सुनेंगे ना, तो बहुत बड़े घर के थे, राजा खानदान के थे रघुनाथ दास गोस्वामी, लेकिन कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति, कृष्ण के प्रति अपार प्रेम, और सब कुछ छोड़कर वह कृष्ण के भक्ति में लग गए। और वह राधा कुंड के क्योंकि अभी अभी रूप गोस्वामी पाद ने बताया, क्या बताया कि सर्वश्रेष्ठ भजन स्थलियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान अगर कोई है तो कौन सा जगह है, राधा कुंड। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस राधा कुंड के तट पे आकर भजन करने लगे। और भजन करने लगे वहां पे, तो उस समय तो कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, वहां पे छोटे छोटे क्यारी थे और वहां पे रहकर वो भजन करने लगे। और मन के अंदर इस प्रकार एक दिन की घटना है कि भजन कर रहे थे खुले आसमान, कुछ तो था नहीं खुले आसमान में वो भजन का, कभी कोई धूप भी लगा करता था उनको, तो स्वयं श्रीमती राधा रानी इतने उन्नत भक्त थे रघुनाथ दास गोस्वामी की, स्वयं श्रीमती राधा रानी उनको छत्र साया देती थी उनको कि धूप न लगे इनको। तो इस दृष्टि को एक बार रूप गोस्वामी पाद ने देखा कि तुम क्या कर रहे हो, स्वयं श्रीमती राधा रानी से सेवा ले रहे हो, उनकी भजन कर रहे हो और उनसे ही सेवा ले रहे हो। तब जाकर रघुनाथ गोस्वामी ने अपने लिए कुटिया बनाया भजन करने के लिए कि हमारे लिए क्यों राधा रानी सेवा करी तुम्हारा। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि परम विरक्त थे वहां पे भजन करने लगे। एक दिन की घटना है कि उस समय मुगलों का राज था, उस समय मुगलों का राज चल रहा था, जो राजा था वो सम्राट अकबर था उस समय का राजा। तो सम्राट अकबर अपने हजारों हजारों सैनिकों के साथ, घुड़सवारी हाथियों के साथ वह किधर तो युद्ध करने के लिए जा रहा था राजा अकबर अपने सैनिकों के साथ तो निकल रहा था। लेकिन क्या हुआ, धूप के कारण सारे सैनिक जितने भी घोड़े हाथी थे सब लोग को बहुत जोरों से प्यास लगा, बहुत प्यास लग गया, प्यास के कारण सब थक चुके, अभी की युद्ध क्या करेंगे जाकर। इसलिए उन्होंने सारे सैनिक इत्यादि बोले कि बहुत प्यास लगा है, सबसे पहले प्यास को बुझाया जाए नहीं तो सब लोग यहीं पे गिर पड़ेंगे। तो अकबर ने राजा होने के नाते उसने विचार करने लगा कि इस इतने सारे मैदान में कहीं दूर दूर तक तो कुछ तो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, कहां पे पानी पिलाएंगे। तो उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक बाबा बैठा हुआ है उधर, चलो उससे कुछ पूछते, निश्चित रूप से कुछ कहीं ना कहीं कोई तो रास्ता दिखाएंगे, पहले हम उस रास्ते में जाएंगे, पहले इन लोग का प्यास बुझाएंगे फिर उसके बाद आगे जाएंगे। तो जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी को इस अकबर ने देखा, तुरंत ही जाकर उनको उनके पास जाकर बोले कि प्रभु आप कोई स्थान, कोई यहाँ पे नजदीक में कोई सरोवर है क्या, कोई तालाब है क्या, कोई नदी है क्या, क्योंकि मेरे सारे सैनिकों को, सारे हाथी घोड़े इत्यादि जोर सबको बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अकबर को बोलने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि अरे कहीं और दूर दूर तक तो कहीं कुछ है नहीं, इसलिए क्या करो तुम यहाँ पे दोनों जो कुंड है इसी में सबको पानी पिला दो। अकबर सोचने लगा कि और कोई नहीं मिला क्या मजाक करने के लिए, है? क्योंकि विश्वास कैसे होगा, हजारों हजारों सैनिकों साथ में थे, बड़े बड़े हाथी घोड़े इत्यादि सब लोग थे, इस छोटे छोटे दो क्यारियों से उनका कैसे प्यास बुझ सकता है। इसलिए वो हंसने लगा, क्या महात्मा आप आपके पास आया मैं कि आप सही रास्ता दिखाओगे, आप तो मुझे मजाक कर रहे हो, सबको प्यास लगा हुआ है। रघुनाथ दास को वापस रिक्वेस्ट करने लगे, कहने लगे प्रभु आप एक बार पिला के तो देखिए, वैसे भी दूर दूर तक कुछ है नहीं यहाँ पे, इसलिए ठीक है जितने लोग का प्यास मिट गया उतना ही सही, आप इतना तो विश्वास करके करिए जितना है उतना तो पहले पी लो। तो इस प्रकार से फिर से वापस रिक्वेस्ट करने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी के सम्राट अकबर में सारे सैनिकों को आदेश दिया कि ठीक है इस जल का पान करो। उस जल में कहते हैं कि सारे जितने भी हाथी घोड़े सैनिक इत्यादि सारे थे, जितने भी सैनिक उसमें जल का पान करके तृप्त हो गए, लेकिन वो जल खाली ही नहीं हुआ, बिल्कुल खाली नहीं हुआ। तो आश्चर्य हो गया सम्राट अकबर, तुरंत गिर पड़ा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में, धन्य आप कितना बड़े महात्मा होंगे आप, आपने बोला और ये सत्य निकला। राधा कुंड और श्याम कुंड की ए मैया, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर एक अभी तो अकबर तो चला गया, उसका काम हो गया, वो चला गया अभी युद्ध के लिए आगे, सब लोग तृप्त हो गए और उसको कहीं और जाना नहीं पड़ा, रास्ते में इस प्रकार का मिल गया उसको, तृप्त होकर आगे निकल पड़े। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे कि इस कुंड की महिमा बताने के लिए बहुत प्रवचन देना पड़ता है कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसकी महिमा सब स्वाभाविक रूप से जाने, इसकी महिमा इतना प्रवचन न देना पड़े, जैसे कि आज के संसार सब लोग राधा कुंड के बारे में सब लोग जानते हैं, उसकी महिमा जानते हैं कि कोई एक स्थान है जो राधा कुंड है, सब लोग जाते हैं स्नान करने के लिए इत्यादि। तो रघुनाथ दास ने इस प्रकार से विचार किया कि कुछ ऐसा यहाँ पे इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि यहाँ इसकी स्वयं में ही इसकी महिमा हो जाए। जैसे मान लीजिए ये छोटा सा सेंटर है कलदमन, छोटा सा सेंटर कम लोग जानते हैं, है ना, यही बड़ा मंदिर बन जाए तो पूरा दमन यहाँ पे आ सकता है, ऑटोमेटिक उसकी ग्लोरी बढ़ जाती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि इस कुंड का कुछ ऐसा जीर्णोद्धार होना चाहिए, लेकिन क्या करें, फकीर हाथ में थोड़ी ना कुछ पैसा, अभी कुंड इसको बनाने के लिए पैसे तो चाहिए ना, क्या करेंगे। तो चुप हो गए, फिर से भजन करने लगे, छोड़ो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन विचार देखिए, विचार एक शुद्ध भक्त के हृदय में जब कुछ विचार होता है तो निश्चित रूप से भगवान उसको पूरा करते हैं, निश्चित रूप से पूरा करते हैं भगवान। तो इस विचार को देखते तुरंत ही बद्रिकाश्रम से भगवान बद्री नारायण ने एक अपने भक्त को, एक विरक्त भक्त था जो कि निकल रहा था वृंदावन धाम में भजन करने के लिए, उसको स्वप्न में आकर बद्रीनाथ भगवान ने क्या बोला कि यहां से मैं तुमको बहुत सारा धन संपत्ति देता हूं और वृंदावन जा रहे हो, वृंदावन में वहां पे एक हमारा भक्त बैठा हुआ है भजन कर रहा है, उसको जाकर सारी संपत्ति दे देना तुम। तो इस प्रकार से भगवान बद्रीनारायण ने उस भक्त को बहुत सारी संपत्तियों को दिया और वो भक्त लेकर वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पहुंचा, और रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पहुंचकर बोला कि भगवान बद्रीनारायण हमारे स्वप्न में आए थे और इस प्रकार से उन्होंने आदेश दिया इस धन को आपको देने के लिए। तो उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी तो पहले मना किए, बोले भाई विधर्भ धन लेके मैं क्या करूंगा, बड़ी समस्या, ये सब धन लेके मैं तो भजन कर रहा हूँ और इस धन को लगाने में फिर मेरा भजन छूट जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या विचार किया कि ये भगवान कृष्ण की योजना है, इसलिए हमको वो सेवा समझ के उस धन को स्वीकार किए, और उन्होंने किस लिए संकल्प भी किया, ये विचार किया था उन्होंने, इसलिए तो बद्रीनाथ भगवान ने भेजा उनके पास धन को, क्योंकि धन रहेगा तभी तो जीर्णोद्धार होगा। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को जैसे ही धन प्राप्त हुआ तुरंत ही तुरंत उन्होंने उस कुंड का जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने उद्यम शुरू कर दिया काम, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है उन्होंने जैसे ही धन प्राप्त हुआ। तो राधा कुंड का उन्होंने सर्वप्रथम जीर्णोद्धार किया और बहुत सुंदर चौरस शेप दिया उन्होंने राधा कुंड को, बहुत सुंदर सेप दिया। और उसके बाद जब श्याम कुंड की बारी आई तो श्याम कुंड को जब सेप देने लगे तो चालू काम हुआ तो संध्या समय हो गया, रात्रि समय हो गया तो काम बंद हो गया। तो रात्रि के समय में रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में पांच पांडव आए। पांच पांडव आकर उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए, क्योंकि आप श्याम कुंड को कल एक स्वरूप रूप रेखा देंगे आप श्याम कुंड को प्रभु, लेकिन उस श्याम कुंड के तट पे हम पांचों पांडव नित्य रूप से वहां पे विराजमान है पेड़ के रूप में, तो आप कल जीर्णोद्धार करने जाएंगे तो कल अभी आपका प्लान बना हुआ कि इन पेड़ों को काटना है, तो उस पेड़ों को आप काटिए मत, क्योंकि ये हम पांच पांडव वहां पे नित्य रूप से विराजमान है, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए। उनके चरणों में गिर कर पांचों पांडव उनसे उस स्थान में रहने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। रात्रि बिता, रूप गोस्वामी पाद ने तुरंत ही आदेश दिया कि इन पांचों पेड़ों को नहीं काटना है, इसलिए श्याम कुंड का जब निर्माण है आप जाएंगे देखेंगे ना, तो राधा कुंड का बहुत सुंदर चौरस शेप में हुआ है, लेकिन श्याम कुंड का निर्माण जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। आचार्य गण कहते हैं कि वो तो ठीक है, पांचों पांडव थे उनके कारण वो पेड़ को छोड़ने के लिए टेढ़ा हो गया, लेकिन एक्चुअली गुह्य दृष्टिकोण से देखे ना भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, है ना, उनकी कोई भी कार्य सीधा होता ही नहीं है, वो खड़े भी रहते तो टेढ़े ही खड़े रहते, कभी देखे कृष्ण सीधा खड़े हैं नहीं ना, तो इस कृष्ण का जब कुंड का उनके कुंड का भी निर्माण होने लगा तो वो टेढ़े मेढ़े ही हुए निर्माण। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत सुंदर सा शेप दिया वहां पे, और जिसकी महिमा ऑटोमेटिक संसार में बढ़ने लगी, ऑटोमेटिक ग्लोरीज होने लगा। तो अभी जो प्रकट रूप में हम देख रहे हैं राधा कुंड को, उसका जीर्णोद्धार ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने करवाया था। तो इस प्रकार से राधा कुंड का जो प्राकट्य इस जगह पे भौम वृंदावन में इस प्रकार से हुआ। अभी अप्राकृत जगत में भगवान के नित्य जगत है गोलोक वृंदावन धाम में इस राधा कुंड और श्याम कुंड का कैसे प्राकट्य हुआ थोड़ा से उसके बारे में हम जानते हैं कि गोलोक धाम वृंदावन में राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकार एक दिन की घटना है कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ लीला करते हुए नित्य लीला करते हुए वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतना रम गए कि वर्णन है कि कृष्ण जो है ना राधा रानी के प्रेम में इतना विह्वल हो गए कि कृष्ण जो है ऑटोमेटिक राधा बन गए, उनका जो शरीर है ना राधा का शरीर हो गया और राधा रानी कृष्ण बन गई। अब प्राकृत जगत में इस राधा कुंड और श्याम कुंड का कैसे प्राकट हुआ मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि कृष्ण राधा रानी के प्रेम में विह्वल होकर उनका जो शरीर है ना वो राधा का शरीर हो गया, राधा बन गई और राधा रानी कृष्ण बन गई। इस दृश्य को सारी गोपियों ने देखा, ये कौन सी लीला चल रही है, कृष्ण राधा बन गए और राधा कृष्ण बन गई, आश्चर्य होने लगे गोपियां कि क्या हो रहा है। तुरंत ही गोपियों ने क्या किया, आने जितनी भी सखियां गोपियां थी इस दृश्य को देखकर, लेकिन ये दोनों इतने प्रेम में पागल हो चुके थे कि एक दूसरे का स्वरूप तक को धारण कर लिया। इस दृश्य को देखते हुए आश्चर्यचकित गोपियों ने उन राधा और कृष्ण को जो कि अलग एक दूसरे का रूप धारण कर लिए थे तुरंत एक स्थान पर बैठा दिया उनको, एक स्थान पर बैठा कर उनके उनका चामर मोर पंख से इत्यादि से सेवा करने लगे। कहते हैं कि इस राधा और कृष्ण का जो प्रेम दोनों का इतना प्रगाढ़ हो चुका था कि उस प्रेम का जो अश्रु जो बहा ना उससे राधा कुंड और श्याम कुंड बन गया, नदी की धारा की तरह अश्रु बहने लगा। आप सोचते होंगे कि इस प्रकार के भी अश्रु बहता है क्या है? कि नदी बन जाए, सरोवर बन जाए, ये भौतिक जगत का, देखिए भौतिक जगत में हम जब रोते हैं ना तब भौतिक जगत में क्यों रोते हैं पता है, प्रेमवश नहीं रोते हैं, जब हमारे हमको दुख होता है तब रोते हैं, जब रियल रूप से हम राधा और कृष्ण से जब प्रेम करेंगे सच में किया, सब कुछ हमारे प्राण वही है राधा और कृष्ण और दूसरा कोई है ही नहीं, अवश्य रचवे कृष्ण विश्वास पालन, जब इस प्रकार का विश्वास हो जाएगा हमारे जीवन में हमको कि कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे इस संसार में, हमारी रक्षा और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन हम विचार करिए कि हम तो पहले अपना प्रयास करते हैं बचने के लिए, बाद में सब कुछ हार गए तब जाके बैठते हैं कि भगवान आपको अभी देखना क्या करना करिए, मैं हार गया, अरे वो पहले ही सरेंडर करने देना चाहिए, बाद में क्यों सरेंडर करने का, अंततः जो ही कृष्ण हमारी रक्षा करने वाले केवल कृष्ण ही है। तो ये जब तक विश्वास और ये प्रेम जब तक नहीं होगा ना कृष्ण के साथ तो उस प्रकार के अश्रु कभी हो नहीं सकता है, और वैसे भी इस संसार की अश्रु भी क्या अश्रु है, और रोते रहते कुछ समय के बाद वो आंसू वो भी सूख जाता है, फिर रोने के बाद वो आंसू गिरता ही नहीं नीचे, लेकिन जब प्रेम रियल प्रेम जब हो जाएगा ना कृष्ण और राधा से प्रेम जब हो जाएगा ना, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की अश्रु धारा गिरेगा, तो कंटिन्यू बंद नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण का जो प्रेम है इतना प्रगाढ़ रूप में बढ़ा कि उनकी आंखों से जो अश्रु से राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण हुआ। कहते हैं कि अपने अपने कुंडों में जैसे ही भगवान कृष्ण और राधा स्नान किए, तुरंत ही अपने अपने स्वरूप में आ गए। तो इस प्रकार से अब प्राकृतिक जगत में राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं इस राधा कुंड और जो अरिट गांव में जो राधा कुंड बोला ना, अरिष्टासुर का वध किया था। तो सुखदेव गोस्वामी पाद इस अरिष्टासुर की कथा कहते हुए श्रीमद भागवतम के ये कथा कहकर हम समाप्त करते। लेट हो रहा है ना? नहीं लेट हो रहा है? कितना समय और चलेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट? आप लोग जितना बताएंगे उतना करूंगा मैं, बताइए।
10 बजे तक चलेगा।
क्या 10 बजे तक? ओके, मतलब 15 मिनट है? 15 मिनट ना चलेगा? 15 मिनट ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी पाद अभी वर्णन करते श्रीमद भागवतम के 10वें स्कंद में इस अरिष्टासुर की वध का कथा करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। श्रीमद भागवतम के 10वें स्कंद के 36वें अध्याय में वर्णन करते हैं और उससे राधा कुंड का प्राकट्य भी आएगा। ये जो भौम वृंदावन में अभी जो राधा कुंड है, तो सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हुए कहते हैं कि शाम का समय था और रास का समय था। शाम का संध्या समय और रास का समय, यही समय था ऑलमोस्ट। यही संध्या समय 7-8 ही बज रहे थे, 9 बज रहे थे, इसी समय था 7 बजे। और संध्या के समय में भगवान कृष्ण अपने जो निकट के उनके जो ग्वाल बाल थे उनके साथ में मिलकर अपने आप को तैयार कर रहे थे। किसके लिए तैयार कर रहे थे? रास के लिए। मैं बोला पहले शाम का समय था और रास का समय था। तो नित्य, क्योंकि भगवान कृष्ण डेली संध्या के समय में, रात्रि के समय वो रास नित्य करके लेट नाइट्स होते हैं। 12-1 बजे तक भगवान कृष्ण 12 बजे तक रास ही खेलते हैं, उसके बाद सोते हैं। आज भी ये लीला हमको निधिवन इत्यादि जगहों पे आज भी प्रत्यक्ष रूप से इन लीलाएं होती हैं। हम वहां पे जाएंगे तो हम उसके कभी गए तो उसको वहां पे श्रवण करेंगे हम, किस प्रकार से निधिवन में आज भी ये लीलाएं होती हैं। तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से अपने आप को डेकोरेट कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, है ना। किससे मिलना है? राधा रानी से मिलना है ना। ये भौतिक संसार में भी ऐसा ही होता है ना, जब प्रेमिका को मिलना है तो किस प्रकार से हम बहुत सुंदर तरीके से सजते हैं, सज धज के जाते हैं, कहीं अगर गड़बड़ दिखा तो कहीं रिजेक्ट न कर दे हमको। तो कृष्ण भी बहुत सजने लगे, रास खेलना है राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास नृत्य करना है, इसलिए उन्होंने अपने आप को बहुत सुंदर से डेकोरेट करने लगे। और सुबल सखा था जो उनको मदद कर रहा था उनको डेकोरेट करने के लिए। तो इस प्रकार से ये चल ही रहा था उनका सजना। उसी समय क्या हुआ, कंस जो है ना एक असुर को भेजा। देखिए कंस जो रोज किसी न किसी असुर को भेजता था। भागवतम में जो असुरों का मारने का दमन की लीला भगवान करते हैं वो तो बहुत कम है, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास समय बहुत कम था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत कम लीलाओं को लिखा है। लेकिन वर्णन है कि भगवान कृष्ण रोज एक असुर को मारने के बाद ही कलेवा करते थे। जब तक एक असुर को मार नहीं लेते थे तब तक वह खाना नहीं खाते थे, भोग नहीं खाते थे। तब तक एक असुर को रोज दमन करते थे। और इन असुरों का भी वर्णन अलग अलग शास्त्रों में है। तो इस प्रकार से नित्य की भांति जैसे रोज कंस एक असुर को भेजता था, उस नित्य की भांति आज असुर एक असुर को भेजा जिसका नाम था अरिष्टासुर। और वो अरिष्टासुर किस रूप में आया? एक बैल के रूप में, बैल का रूप धारण करके आया। सारे असुर जो भी असुर आए मारने के लिए कुछ ना कुछ अलग वेश धारण करते थे। आप लोग सुने होंगे कई सारे और असुरों की लीलाएं अलग वेश धारण कर लेते थे, क्योंकि कृष्णा तुरंत पहचान न जाए। तो ये जो अरिष्टासुर था एक बैल का, खुखार बैल का रूप धारण करके आया और धारण करके टारगेट बनाया कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण उस समय सज रहे थे, वन में सज रहे थे, वो कुंज में सज रहे थे रास खेलने के लिए। अभी वो बैल बहुत दूर से देख रहा है, बहुत क्रोधावस्था में देख रहा है वो, आप लोगों को मालूम है कि जब बैल क्रोधित होता है ना तो उसको कोई संभाल नहीं सकता है, बहुत क्रोध, विशेष करके क्या सांड बोलते हैं ना, वो जब भी क्रोध होता है, क्रोधावेश अवस्था में होता है ना, तो बहुत फुंकार लेते हुए और जब अपने पैर को जमीन पर घिसते हुए वह मारने चलता है लोगों को, बहुत लोगों को मार देता है अगर गुस्सा हो गया तो। तो ऐसे भी तो ये असुर था, उसको तो मारना था कृष्ण को, बैल का रूप धारण करके वो खुकार एकदम फूंकते हुए जमीन को रगड़ते हुए तुरंत दौड़ लगा के वो कृष्ण की तरफ भागा, कृष्ण को मारने के लिए, एक ही लक्ष्य था कृष्ण को मारना उसका। और जैसे ही दौड़ा कृष्ण ने देख लिया कह रही हमको ही मारने आ रहा है लगता है, कृष्ण ने देखा तुरंत ही सुबल सखा को साइड में किया और कृष्ण ने तुरंत ही जैसे ही वो मारने गया उसके सींग को कृष्ण ने पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि जब सिंह को पकड़ लिया तो उसकी शक्ति जो है ना वो छीड़ हो जाती है। कभी कभी अनुभव करना आप लोग तो हमारे गौशाला में आइए जब हमारा दामोदर जब गुस्सा करता है ना तो पकड़िए उसके सिंह को तो शांत हो जाता है वो लेकिन हमारी हिम्मत नहीं बढ़ती है, लेकिन पकड़ने से वो उसकी शक्ति जो कम हो जाती है, नहीं तो भागेंगे तो कितना भागेंगे तो इस प्रकार से वो जो असुर था बैल का रूप धारण करके आया और कृष्ण के ऊपर अटैक किया, कृष्ण ने उसके सिंह को पकड़ लिया और सिंह को पकड़कर उसको वापस ऐसा धक्का दिया कि वो जहां से शुरुआत किया था वहीं वापस पहुंच गया। अभी तो अभी सोचिए कि घात लगा हुआ है, अभी उसको और कितना क्रोध आएगा, और कितना क्रोध आएगा सोचिए, इतना क्रोधावेश अवस्था में होकर वो आया था और पकड़ के वापस उसको धक्का देकर पीछे फेंक डाला तो वापस कितना क्रोधित होकर आएगा वो, तो वापस तुरंत ही उठकर एकदम आग बबूला होकर वापस कृष्ण के ऊपर अटक गया। कृष्ण सोचे कि अरे भाई रास का समय हो रहा है अभी, ये कहाँ से फोगड़ का आ गया डिस्टर्ब करने के लिए, एक इसलिए कृष्ण ने सोचा कि अभी इसके साथ कुछ उद्यम नहीं कर रहा है, इसको खत्म करते हैं। सो कृष्ण समझ गए एक असुर है, रोज तो एक असुर को मार ही रहे थे, कंस रोज एक को भेजता था, आज हुआ नहीं है, आज भेजा नहीं था इसलिए आज शाम के समय भेजा उसने, इसलिए समझ गया। तुरंत ही दूसरी बार जब वो आया बैल वो असुर, तो कृष्ण ने वापस उस सिंह को पकड़ा, इस बार धक्का नहीं मारा, इस सिंह को उखाड़ दिया, इस बार उखाड़ के उसी सिंह से उसको मार डाले, तुरंत ही मार डाले, मारकर तुरंत ही वापस फ्रेश होकर वापस धस धस कर फटाफट करो सुबल, चलो 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 चलो, नहीं तो उधर राधा रानी नाराज हो जाएगी। तुरंत वो निकलकर राधा रानी के पास पहुंचे और जैसे ही राधा रानी के पास पहुंचे, अभी पहुंचने से पहले ही खबर पहुंच गया, क्या खबर पहुंचा कि कृष्ण ने गौ हत्या किया एक खबर राधा रानी के पास पहुंच गया पहले ही, न्यूज बहुत पहले पहुंचता है, व्यक्ति बाद में पहुंचता है लेकिन न्यूज तो बहुत पहले पहुंच जाता है, ये सबको अनुभव है और विशेष करके उसमें से कोई खराब न्यूज हो तो और जल्दी पहुंचता है तो कृष्ण ने तुरंत तैयार होके तो गए बड़े उत्साह से, लेकिन राधा रानी को वहां पता चल चुका था कि कृष्ण ने बैल को मारा है, गौ हत्या किया है, इसलिए राधा रानी इस बात को, इस न्यूज को सुनकर ही खिन्न हो गई, वो खिन्न हो गई और कृष्ण को देखी तक नहीं, रास की बात तो छोड़ो, उनके साथ बिहार की तो बात छोड़ो, कृष्ण को देखा तक नहीं और आगे कर दिया, किसको, ललिता को आगे कर दिया, आगे कर ललिता को कहने लगी कि उसको बोलो, कृष्ण सामने ही है लेकिन क्या बोल रहे हैं, तुम उसको बोलो गौ हत्या करके आए इसलिए यहां से जल्दी से हटने के लिए, ऐसे गौ हत्यारे का मैं दर्शन नहीं करना चाहती हूं, धिक्कारने लगे। कृष्ण सोचे हो क्या गया है, क्या किया मैंने, अरे तुमने गौ हत्या किया, अरे असुर था बड़ा असुर था, मैंने तो तुम लोग बुद्धिहीन गोपियां हो, कृष्ण बोला तुम लोग को बुद्धि ही नहीं है, अरे मैंने इन सखाओं को, इन मित्रों को, तुम लोग को रक्षा करने के लिए इस असुर को मारा, वो असुर था। राधा रानी ने बोले कि देखो बहुत चालाकी मत करो, तुम राजा का लड़का हो ना तो इसको मतलब थोड़ी ना कुछ भी कर सकते हो तुम, अरे वो असुर था, भले ही मैं मानती हूँ कि चलो असुर था लेकिन किस रूप में आया था, बैल के रूप में आया था, इसलिए बैल जो है ना हमारा पिता है, जैसे कि गाय हमारी माता और बैल हमारा पिता है, धर्म का प्रतीक है बैल, बैल असुर आया लेकिन किसके रूप में आया, बैल के रूप में आया, इसलिए तुमको वो हत्या का पाप लगा हुआ है, इसलिए तुम जाओ इधर से, तुम्हारा दर्शन नहीं करना है, ललिता बोलो बोलो उसको जल्दी इधर से भागने के लिए बोलो, इसके साथ हमको बिहार नहीं करना है। कृष्ण सोचने लगे अरे बाप रे क्या हो गया, अब कैसे लीला होगा, अब कैसे विहार करेंगे, कृष्ण बड़े टेंशन में हो गए, कृष्ण ने सोचा कि चलो क्या करना चाहिए, ललिता को बोले पूछो पूछो क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, अभी कुछ पाप किया है, हत्या किया है तो उसका कुछ प्रायश्चित तो बताना पड़ेगा ना। तो राधा रानी बोले बोलो उसको जाके सारे नदियों में स्नान करके आए, क्योंकि प्रायश्चित का सबसे बड़ा साधन वही है, जाए सारे तीर्थ स्थानों में घूमे और भ्रमण करके सब जगह स्नान करते करते पवित्र होकर वापस प्रायश्चित करके मेरे पास आए। तो कृष्ण ने बोला ठीक है बस ठीक है कोई बात नहीं, लीला तो आज ही करना है मुझे, आपके साथ बिहार तो आज ही करना है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, तुरंत ही स्मरण किया सारे नदियों को, सारे नदियों को स्मरण किया, और स्मरण करने मात्र से श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने एड़ी से पैर के नीचे, एड़ी बोलते ना, क्या बोलते हैं एड़ी, एड़ी से जमीन के ऊपर प्रहार किया और तुरंत ही जिन नदियों का स्मरण किया था तीर्थ स्थानों का, सारे तीर्थ स्थान वहां से प्रकट हो गए, उस जगह से प्रकट हो गए। जैसे ही सारे तीर्थ स्थान भगवान की सेवा में प्रकट हो गए, तुरंत ही कृष्ण ने उसमें स्नान किया, वही श्याम कुंड है, उसमें कृष्ण ने स्नान किया, तीर्थों को प्रकट कराया और स्नान करके वापस फिर से चले गए राधा रानी के सामने, बोले कि प्रायश्चित करके आ गया मैं, तुम यही चाहते थे ना कि सारे तीर्थों में मैं स्नान करके, देखो सारे तीर्थ यहाँ पे प्रकट हो गए। राधा रानी ने बोले कि उल्लू बनाने के लिए मैं ही मिली तुमको, जमीन खोदा थोड़ा पानी निकल गया उधर से और उधर नहा के आके बोलता है कि प्रायश्चित कर लिया, ऐसा नहीं होता प्रायश्चित, क्या प्रमाण है इस प्रकार का। राधा रानी फिर से दिखाने लगी, बोले सेकंड दूसरा प्रॉब्लम, नहा लिया प्रायश्चित कर लिया उसके बाद भी दिक्कत, अब क्या करें, प्रमाण मांग रही है। कृष्ण ने फिर से स्मरण किया सारे नदियों को, बोले कि राधा रानी को विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए तुम लोग प्रमाण दो आकर, अपना परिचय दो कि यहाँ पे तुम लोग सारे तीर्थ स्थान यहाँ पे आ गए हो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के स्मरण करने मात्र से सारे तीर्थ स्थान वहां पे फिर से वापस प्रकट हो गए और प्रकट होकर स्वरूप में आ गए। अभी अभी तक जल के रूप में आए थे लेकिन अभी स्वरूप में आ गए। मैं गंगा हूँ, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सारी नदियां जो है, मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ, सब आके राधा रानी के पास आकर वो अपना अपना परिचय देने लगे। सब परिचय देने के बाद राधा रानी समझ गई सारे तीर्थ आ गए, वैसे भी तो कृष्ण की चाल ले समझ गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करके वो विश्वास कर लिया कि चलो ठीक है तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। तो अभी कृष्ण का चालू हो गया, अभी इधर राधा रानी कन्विंस हो गई लेकिन कृष्ण का क्या बोलता, अभी फिर से क्या बोलते हैं, बदला लेने के मूड में हो गए। अभी तक तो उसको पाने के मूड में था, जब कृष्ण अभी वो विश्वास कर ले कि प्रायश्चित करके आया था, कृष्ण अभी टोन मारने लगे, बोलते हैं कि देखो तुम लोगों ने कभी एक्चुअली तुम हमको धिक्कार रही थी ना, एक्चुअली धिक्कारने लायक तो तुम लोग हो, तुम लोग धिक्कार, कभी कोई अच्छे कार्य किया है क्या, हमेशा केवल तकलीफ ही देते हो, केवल अच्छा कार्य तो कभी किया नहीं, इसलिए धिक्कारते हुए बोलने लगे कि एक काम करो, रास तो अभी तो करेंगे, नित्य तो करेंगे, चिंता मत करो, रास लीला करेंगे, लेकिन क्या करो अभी हमारे ये कुंड में जो श्याम कुंड में है तुम लोग स्नान करो सारे गोपियां, स्नान करके बाहर निकलो, उसके बाद नित्य करेंगे हम, मैं तुमको कहीं और नहीं जाने के लिए बोलूंगा, चिंता मत करो। इस प्रकार से कृष्ण बोलने लगे, जब कृष्ण इस प्रकार से बोले तो राधा रानी बोले कि मैं क्यों तुम्हारे कुंड में स्नान, मेरे को नहीं जाना तुम्हारे कुंड में स्नान करने के लिए, हम स्वयं एक कुंड का निर्माण करेंगे। अभी कृष्ण ने बोला अरे कहां फंस गया है बोल के, अभी एक कुंड का निर्माण करने जाएंगे तो और कितना टाइम लगेगा, एक तो संध्या समय, ये सारा प्रोग्राम संध्या समय से शुरुआत हुआ, देखिए संध्या समय से बढ़ रहा है सारा, घंटे दो घंटा बीता, तीन घंटा हो गया, सब बढ़ते जा रहा है, टाइम बिगड़ते जा रहा है। कृष्ण बोले आज का क्या दिन है, देखो असुर को वध करना पड़ा, जो मनाना पड़ा, फिर तीर्थों का बुलाना, करते करते ये थे कि संध्या समय से रात्रि समय होने लगा। कृष्ण ने सोचा कि अभी ये तो जिद पकड़ ली। राधा रानी बोला कि नहीं, कृष्ण बार बार समझाया कि इस कुंड में स्नान कर लो श्याम कुंड में। राधा रानी ने बोला कि तुम्हारे कुंड में हमको छूना देखना तक नहीं, तुम्हारे कुंड को स्वयं हम एक कुंड का निर्माण करेंगे। इसलिए राधा रानी ने तुरंत ही सारे गोपियों को उसने आदेश दे दिया कि जाकर तुरंत ही इसके कुंड के बाजू में ही एक कुंड का निर्माण करो। सारे गोपियों बेचारे को सेवा में लगा दिया, सारे लोग उस कुंड को खोदने लगे, वहां पे जमीन खोदने लगे, सबको सेवा में लगा दिया। चलो ठीक है, सारे गोपियों ने मिलकर बड़ा उद्यम किया और उसके बाद कुंड का निर्माण तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या था बताओ, उसमें पानी ही नहीं था। कृष्ण हंसने लगे कि फोकट का मेहनत की है, पानी ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम लोग का मेहनत बेकार नहीं जाएगा। बाजू में ये हमारा कुंड है, उसमें से पानी लेके डालो, खत्म करो तुरंत। राजा रानी बोला कि पानी को देखूंगी तक नहीं मैं, तुम उधर से लेने की बात कर रहा है पानी, हम अपने कुंड में स्वयं पानी भरेंगे। राधा रानी के इस प्रकार से बात करते करते तुरंत ही राधा रानी ने क्या किया, फिर से सारे गोपियों को आदेश दिया कि जाओ पानी लेकर आओ मटके से, इस कुंडों को हम मटके से भर डालेंगे। कहां पे भेजा? वो मानसी गंगा के पास भेजा, जो कि राधा कुंड से मानसी गंगा लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। सारी गोपियों को बेचारी को लगा दिया सेवा में, काम में लगा दिया, सब लोग खड़ा मटका भर भर के ला ला के डाल रहे हैं। अभी एक तो इतना दूर से, वो भी इतना बड़ा कुंड, उसमें क्या इसमें मटका मटका का पानी दिखेगा। बेचारी गोपियां अभी थक गई, लेकिन क्या करेंगी, सहेली को कुछ बोल ही नहीं सकती है, सेवा कर रही है। कृष्ण विचार करने लगे, ऐसा चला तो ये कई दिनों तक चलता रहेगा और कुंड तो भरने वाला नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। फिर से विचार करने लगे कृष्ण, कैसे मनाओ अब राधा रानी को, मनाना तो पड़ेगा, कैसे भी तो करके मनाना पड़ेगा करके विचार करने लगे। विचार करते हुए वापस उन्होंने उन सारे तीर्थों का स्मरण किया। बोले स्मरण करके उनको बोला कि कैसे भी करके तुम लोग क्या करो, देखो मेरी तो नहीं सुनने वाली अभी, हो मैं कुछ भी बोलूंगा ना उसका उल्टा ही जवाब मिलेगा। देखिए कितना बड़ा प्रेम है एक दूसरे का, वो तो सुनने वाले नहीं अभी, लेकिन कैसे भी करके मुझे उसको मनाना है, इसलिए तुम लोग क्या करो उसके चरणों में गिर के उससे सेवा मांगो, बोलो कि हमको सेवा दीजिए। हाँ, इन गोपियों को तो सेवा में लगा, लेकिन हमको सेवा में दीजिए, और तुम लोग सेवा में, सारे तीर्थ अगर सेवा में लगे तो एक चुटकी में भर जाएगा कुंड। इसलिए कृष्ण ने ये दिमाग लगाया और तुरंत ही वापस तीर्थों का स्मरण करके उन्होंने क्या किया, राधा रानी के पास भेज दिया, राधा रानी के पास भेज दिया, और राधा रानी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि हमको भी सेवा दीजिए आप, कृपया हमको भी सेवा दीजिए, सेवा का अवसर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते करते श्रीमती राधा रानी ने उनको परमिशन दे दिया सेवा करने का। कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं आचार्य कि सारे अभी समय तो था नहीं ना, तो प्रश्न उठता है कि एक तो समय नहीं था, इतने सारे तीर्थ आके उनको दंडवत मारेंगे, सेवा दो तो कैसे हो सकता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सारे तीर्थ का एक मूर्तिमान स्वरूप प्रकट हुआ और कृष्ण राधा रानी के चरणों में जाकर गिरा और उनसे सेवा मांगी, और जैसे ही उनको परमिशन मिला सेवा करने का, कहते हैं कि तुरंत ही कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी का तिथि, जैसे ही उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ सारे तीर्थों का, तुरंत ही उस राधा को, क्योंकि तीर्थ तो आ चुके थे जल के रूप में राधा श्याम कुंड में, तो जैसे ही राधा रानी का आदेश मिला उनको सेवा करने का, तुरंत ही उस सारे तीर्थ जो श्याम कुंड में थे बांध को तोड़कर वह कहां पर पहुंच गए, राधा कुंड में। इसलिए देखेंगे ना राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में एक संगम है जहां पे उसका जल आपस में एक दूसरे से टच है ना, तो इस प्रकार से वो संगम हो गया वहां पे, बांध को तोड़कर तुरंत राधा कुंड के जल में राधा उधर प्रवेश गया सारे तीर्थों ने। तुरंत ही श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ, अभी कुंड का निर्माण हो गया, सखियों के साथ स्नान की और स्नान कर बहुत सुंदर तरीके से फिर जाके ये कब प्रकट हुआ, रात को 12 बज गए, संध्या समय से रात को 12 बजे अष्टमी तिथि। कहते कृष्ण को ये अष्टमी तिथि बहुत पसंद है, एक्चुअली कृष्ण का जन्म हुआ कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी के दिन, राधा रानी का जन्म हुआ राधा अष्टमी अष्टमी के दिन, और राधा कुंड का प्राकट हुआ बहुलाष्टमी अष्टमी तिथि। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, इस प्रकार से कृष्ण जो राधा कुंड का प्राकट होने के बाद सारी गोपियां उस कुंड में स्नान कर लिए, और स्नान करने के पश्चात बहुत मधुरमय लीलाएं वहां पर रास नृत्य करो उस रात्रि को हुआ। तो इसलिए इस राधा कुंड की अपार महिमा है। लेकिन कहते हैं कि देखिए इस कुंड में जो स्नान करने की एक योग्यता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उस कुंड में जाके डुबकी लगा ले या कूद जाए बाकी सरोवरों की तरह, नहीं, इसके लिए योग्यता। देखिए रूप गोस्वामी पाद इसकी महिमा का तो वर्णन किए, लेकिन इसकी योग्यता का भी वर्णन करते हुए वो पहले ही इसी उपदेशामृत ग्रंथ में पहले ही बता दिए उसकी योग्यता को। उसकी योग्यता को बताते हुए कहते कि वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा योगम उदरोपस्त वेगम एतान वेगान योभिषेत धीरा धर्म, कि इसकी योग्यता, इस कुंड का सेवन करने के लिए, उसमें उसका पान करने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, कि हमारी वाणी का कंट्रोल, हमारे वेग जो है 6 प्रकार के वेग जो है ना, जीवा वेग, वाणी वेग, इन सारे वेगों को दमन करना पड़ेगा। बोले क्रोध के वेग को सारे दमन करने पड़ेगा। अगर हम इसको दमन कर लिए तो निश्चित रूप से हम योग्य है उस कुंड का सेवन करने के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसकी योग्यता के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णा अमानि नामान देना कीर्तनीय सदाहरी। कि तृण से भी अधिक नम्र होना, पेड़ से भी अधिक सहनशील होना, पेड़ का को काटा जाता है फिर भी वो बोलता नहीं है, पेड़ से भी अधिक सहनशील होना, इस प्रकार का ई योग्यता है राधा कुंड के सेवन करने के लिए योग्यता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी लिखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, चार कुमार, सनद इत्यादि, सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने आप को इस कुंड के लिए योग्य नहीं मानते क्योंकि ये इतना महान कुंड है। तो हम किसके खेत के मूल्य है। योग्यता होना चाहिए और ये योग्यता एक एक करके जैसे ही हम भजन सागर, ऐसा नहीं कि चलो हमको कभी प्राप्ति नहीं होगा योग्यता, ऐसा नहीं है। हम जैसे ही इस भजन साधन को अपने तीव्र बनाएंगे, जैसे ही भजन साधन करेंगे, इसी भजन साधन से करते 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 हम उस स्थान, उस योग्यता को धीरे धीरे हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से उसी ग्रंथ में अंतिम में उपदेशा अंतिम में रूप गोस्वामीपाद इसकी महिमा को बताते हैं राधा कुंड का, शुरुआत से लेके, क्योंकि उपदेशा में जो ग्रंथ है ना, वैदिक भक्ति, साधन भक्ति से लेके प्रेमा भक्ति तक है, उसको प्रेमा, तो ये प्रेमा भक्ति की प्राप्ति है। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो कैसे, साधन भक्ति से करते 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 धीरे 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 हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और उस लक्ष्य की प्राप्ति मतलब क्या है, यही राधा कुंड। लास्ट में जो बताते हैं ना, वो राधा रानी की महिमा और राधा कुंड की महिमा के बारे में बताते हैं। ये हमारी अंतिम प्राप्ति है, इससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो उसकी योग्यता के बारे में, हम जब तक योग्य नहीं है तब तक हम उसमें जाकर उद्यम नहीं करना चाहिए। बहुत ही उसके तट पे बैठ के प्रार्थना करते हुए उनके जल को लेकर आचमन करना चाहिए। हमको, हमारी योग्यता नहीं है कि हम उसमें स्नान इत्यादि वगैरह कर सकते हैं। योग्यता अगर है, हम प्रभु गोस्वामीपाद ने योग्यता के बारे में बता दिया, अगर है तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने एक्चुअली मना किया है, प्रभुपाद जी ने मना किया, क्योंकि प्रभुपाद जी पहले एक्चुअली प्रभुपाद जी ने मना नहीं किए थे, लेकिन 1975 में जब वो विदेशी शिष्यों के साथ जब आए वृंदावन धाम में, तो राधा कुंड की महिमा तो उन्होंने बहुत बताया हुआ था, इसलिए विदेशी शिष्य जब राधा कुंड के पास आए तो तुरंत इतना उनके अंदर प्रफुल्लित हो गया कि जिसका वर्णन हम प्रवचन में सुनते थे आज उसके तट पे है। और तुरंत ही सारे विदेशी शिष्य ने क्या किया, उसमें कूद कूद के स्नान करने लगे और खेलने कूदने लगे और किक मारने लगे। प्रभुपाद जी ने दृश्य जैसे ही देखा, प्रभुपाद जी बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गया कि इन लोग की महिमा नहीं पता, ये इंद्र तृप्ति का स्थान बना लिए। तो प्रभुपाद ने तुरंत डांटते हुए मना कर दिया कि राधा कुंड में स्नान नहीं करने का, उधर नहीं जाने का। इस प्रकार से प्रभुपाद ने बहुत डांटते हुए मना किया, क्योंकि हमको जब तक इसकी योग्यता हमारे पास नहीं आ जाती है तब तक हम करते हैं ना, तो निश्चित हमारा पतन, प्रेम की तो बात ही छोड़ो, हमारा पतन, हमारा दुर्गति हो जाता है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से रूप गोस्वामीपाद अंतिम एक बात कहते हुए कहते हैं, अंतिम विचार है कि मान लीजिए कोई कोई भक्त गए होंगे राधा कुंड, मैंने अभी बहुत उसकी महिमा बताया कि इतना पवित्र स्थान, मतलब उसका दर्शन करने मात्र से ऐसी स्थिति हो जाती है। तो अंतिम विचार में लिखते हुए कहते हैं कि जब हम राधा कुंड में स्नान करते हैं या उसका जल को सेवन करते हैं तो हमको प्रेमा भक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुआ, क्यों नहीं प्राप्त हुआ प्रेमा भक्ति? ऐसे कई भक्त लोग गए होंगे, देखे होंगे, जल का पान भी किए होंगे, क्यों प्रेमा भक्ति नहीं प्राप्त हुआ? तो उत्तर यही है कि श्रील रूप गोस्वामीपाद इस श्लोक में, जो श्लोक में अभी लिया, जो जिसका वर्णन कर, उन भक्तों का वर्णन कर रहे हैं जो कि भक्ति, भाव भक्ति के स्तर पे स्थित हो चुके हैं, उनका स्तर वो पहुंच चुका है। अगर वो भक्त उस जगह पे जाकर उसका सेवन करते तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम उनको तुरंत प्राप्त हो जाता है। तभी हमको उस भाव भक्ति, तभी तो हम साधन में अटके हुए हैं, इसमें मन की बहुत गतिविधियों से विचलित होकर इसमें अभी धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहे हैं साधन भक्ति करके। तो निश्चित रूप से ये साधन भक्ति को करते 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 हम निश्चित रूप से, विशेष करके अभी कार्तिक महीना है तो हम जितना इसमें तीव्रता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हम एक एक स्टेप आगे हम बढ़ते जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा कुंड प्राकट्य दिवस की जय। हरे कृष्णा दमन भक्तवृंद की जय।
जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना विस्तार से बहुत सारे विषय को एक साथ प्रभु जी कवर किए।
अभी प्रसाद का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी
अभी प्रसाद का समय हो गया है। एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था कि आप लोग जो व्हीकल पार्क करते हैं दूसरों के गेट के सामने ना लगाए, और लगाया तो गलती से हैंडल लॉक ना करें, तो बहुत इनकन्वीनियंस होता है, लोग नाराज भी होते हैं और हमें